तो चलिए डायरेक्ट शुरू करते हैं। बुक पे खोल लीजिए, पेज नंबर 9 है और जन्नत वाजिब करने वाले आमाल में से पहला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ज़ुबान और शर्मगाह की हिफाजत। अब मैं और आप तो ये बात नहीं कह सकते, लेकिन किसने कही, जिसने आपको मुझे ये दीन दिलवाया, जिसके नाम का कलमा पढ़ते हैं, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर कोई बात कही है तो उसके अंदर यकीनन बहुत बड़ी खैर होगी। तो हदीस आपके सामने है, हज़रत साहल बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझे इस चीज़ की ज़मानत दे जो इसके दोनों जबड़ों के दरमियान, यानी मुराद क्या है, जबड़े ये होते हैं ना जॉस, मुराद ये है कि इसके अंदर यानी ज़ुबान, और दूसरी जो दोनों टांगों के दरमियान है यानी शर्मगा, मैं इसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। ये बुखारी की रिवायत है 6474, किताबुर रिकाक है, बाब है हिफ्ज़ुल लिसान। इतनी बड़ी बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद से नहीं कह सकते, ज़रा से इस पे गौर कीजिएगा। इतनी बड़ी बात कि अगर तुम मुझे अपनी इन दो चीज़ों की गवाही दे दो या इसकी तुम सही इस्तेमाल करोगे तो मैं तुम्हें जन्नत में दाखले की खुशखबरी सुना देता हूँ, और क्या चाहिए? ज़रा सा सोचिए इसके बारे में। और आप देखिए कि ये वो चीज़ें हैं कि जो इंसान की ज़िंदगी में खैर लेकर आती हैं। फिर इसी में एक और हदीस हमारे सामने है। हदीस क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और यौम आखरत पर ईमान रखता है वो खैर की बात कहे या फिर खामोश रहे। अबू दाऊद की रिवायत है 5154, किताबुल अदब है। इसको पढ़ते ही तो मेरे जहन में इंग्लिश का एक जुमला आ गया जो अक्सर लोग बोलते हैं, उसका तर्जमा क्या है या खुलासा क्या है? सिर्फ उस वक्त बोलो जब तुम्हारे पास खामोशी से ज़्यादा खूबसूरत लफ्ज़ हो। समझ आई? जब तक आपके पास खामोश रहने से खूबसूरत अमल ना हो तो मत बोले, क्योंकि वो कहते हैं ना कि बोलना अगर चांदी है तो चुप रहना सोना है, नजा मन समत। इंसान के हुस्न में यानी जो चीज़ इंसान के ब्यूटीफाई करती है ना, एक चीज़ खामोशी है। आप खुद देख लें, कोई शख्स जब तक बोलता नहीं है कितना बारूब लगता है, वो किस एक्सेंट से ताल्लुक़ रखता है, वो पढ़ा लिखा है, वो अनपढ़ है, वो कम जानता है, अल्हम्दुलिल्लाह किसी को नहीं पता लगता। इधर वो बोलेगा, कई दफ़ा इतनी खूबसूरत शक्ल, बोलने के अंदाज़ में खूबसूरती नहीं है, भद्दापन लगेगा, और ऑपोज़िट भी है। आम से चेहरे, आम सी शक्लें खूबसूरत हो जाती हैं जब कोई अच्छे तरीके से बात कर रहा होता। फिर दूसरी बात आप देखिए कि बोलें तो किस तरह बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं कि खूबसूरत बोलते हैं। आप देखिए कि ज़ुबान ही वो चीज़ है जिससे झूठ बोला जाता है, गीबत की जाती है, बोहतान, चुगलखोरी, गाली गलौच, धोखे, फरेब, झूठी कस्में, किसी की बेअदबी की जाए तो ज़ुबान से की जाती है, बुरे अखलाक ज़ुबान ही से मोस्टली सरजद होते हैं, और बाकी सब कुछ यानी गैर महरम से मोहब्बत भरी बातें करना, किसी और की बीवी के साथ राह और रस्म बढ़ाना, इसको आप जिस हद तक आगे ले जाइए ये सब कुछ ज़ुबान से मुतल्लिक है। बल्कि यहाँ ये भी याद रखिएगा, मुनाफ़िकत की जो चार मशहूर अलामतें अल्लाह के नबी ने हदीस में दी और आप सबको बताऊँगी, उनमें से तीन ज़ुबान से हैं। बात करे तो झूठ बोले, कहाँ से बोलेगा? ज़ुबान से। लड़ाई हो जाए तो गलम गलोच करे, कहाँ से करेगा? वादा करे तो खिलाफ करे, ज़ुबान से। सिर्फ एक अमानत में ख़यानत अलग रह जाती है, तो क्या पता चला कि इस ज़ुबान की बड़ी हिफाजत की ज़रूरत है, ये बहुत ज़रूरी है। कम बोलें, बच जाएंगे, कोई आपको दुनिया के किसी बाजार में रुसवा कर ही नहीं सकता, कोई आपके लफ्ज़ नहीं पकड़ सकता। घरों में हर वक्त यही जंगें चल रही होती हैं, उसने ये कहा, मैंने ये कहा, मेरी ये मुराद थी, उसकी ये मुराद, या सफाइयाँ पेश कर रहे होते हैं या हम दूसरों के ऊपर गिले शिकवे रख रहे होते हैं। तो इसके बारे में अपने आप को हमेशा से रखिए कि मैंने अपने आप को ज़्यादा चुप रखने की आदत डालनी है और कम बोलना है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि इसी में आपको एक और हदीस भी नबी सल्लम की मिल रही है, अबू दाऊद 5154 है, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल यकुल खैरन او لیسمت. جو شخص اللہ اور جب آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ خیر کی بات کہے یا پھر خاموش رہے. یہ بھی کتاب الادب کی روایت ہے. اور سورت قوف, کاف نہیں کہف نہیں قوف, اس کی آیت نمبر 18 تو بندے کی زبان بند کر دیتی ہے. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. انسان منہ سے کوئی لفظ نہیں نکال پاتا مگر اس کے پاس نگہبان فرشتہ اس کی بات لکھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. خوف نہیں آ رہا؟ دیکھیے, اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے, میں نے تو بیسیوں بار دیکھی ہے یہ چیز, کوئی بات, کوئی ایگریمنٹ, کوئی کمٹمنٹ, کہا جائے کہ اچھا یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں, گگی بن جاتی ہے. نہیں نہیں نہیں, ریکارڈ نہیں کرنا. ریکارڈنگ سے ہمیں خوف آتا ہے تو نہ کریں, اللہ کے پاس تو ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا. ہمیشہ یہ اپنے لیے ٹپ لکھ لیں, جیسے وہ نیٹ کی زبان سے بولیں اٹس بینگ ریکارڈڈ. ایئرپورٹس پہ لکھا ہوتا ہے, جگہ جگہ آپ پڑھیں نا تو سائن لگے ہوتے ہیں انگلش اردو میں بھی, یہاں بھی ہوں گے شاید, کہ لائیو ویڈیوز بن رہی ہیں, کیمراز آن ہیں, کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. کوئی بھی چیز کہیں رکھ کے چھوڑ دیں گے, آپ کو نہیں پتہ چلے گا, دوسروں کو پتہ چل جائے گا. تو کیا پتہ چلا کہ اپنے لیے ایک ٹپ لکھیے پھر. اب ہمیں سلیوشن بھی تو لینا نا. زبان کا استعمال غلط کیسے رکے گا؟ جب آپ اور میں یہ سوچیں گے میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے, یہ ری پلے ہوگی قیامت کے دن, اور چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات ریکارڈ ہو رہی ہے. انسان کہے گا نا مالی حاصل کتابی, یہ کیسی کتاب ہے؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاہ. سورت کہاں ہے قرآن میں؟ آپ 15واں پارہ کھولیں آپ کو مل جائے گی. اصل بات یہ ہے کہ ہم بغیر سوچے بولتے ہیں, اور اتنا دکھ کسی کو. آج ابھی میں ایک حدیث پڑھ رہی تھی, ابو ذر غفاری حضرت بلال کے پاس کھڑے تھے کسی بات پہ. دیکھیے ان کی نیتیں بری نہیں ہوتی تھیں, لیکن منہ سے جب بات نکل ہی جاتی ہے نا تو بندہ کچھ نہ کچھ کم بول ہی دیتا ہے. میں آپ کو حدیث پڑھ کے سنا دیتی ہوں جس سے آپ کو اس بات کا احساس ہوگا, یہ میرے آپ کے اپنے عمل کے لیے. جب تک میں اور آپ اپنے اوپر خود گواہ نہیں بنیں گے بات نہیں بنے گی. ایک مرتبہ خالد بن ولید, عبد الرحمن بن عوف, ابو ذر غفاری اور بلال رضی اللہ عنہم اجمعین, سارے بڑے لوگ ہیں, یہ بڑے بڑے لوگ ہیں, ہم جیسے لوگ نہیں تھے. ان میں سے اکثر تو ویسی صاحب کے نل اولون ہیں, اشرہ مبشرہ. یہ سب بیٹھے تھے, آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ کسی بات کے جواب میں ابو ذر نے کہا یہ کام ایسے کرنا چاہیے, کوئی رائے دے دی. جواب میں حضرت بلال نے کہا نہیں, ایسے نہیں کرنا چاہیے. ابو ذر نے کہا اللہ اکبر کبیرہ یا ابن سودا, بس یہ دو لفظ ہیں, یا ابن سودا, او کالے انسان کے بیٹے, یعنی یا کالی ماں کے بیٹے یا کالے باپ کے بیٹے. ابن جو کہہ دیا تو کسی کا بھی ہوگا. میری بات کو غلط کہتے ہو؟ بس. حضرت بلال غصے کی حالت میں اٹھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو ذر کی شکایت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر سخت برہم ہوئے. ادھر حضرت ابو ذر بھی آپ کے دربار میں حاضر ہو گئے. آپ نے ان کی طرف بالکل توجہ نہ فرمائی, یعنی غصے کا اظہار کیا. حضرت غفاری کے تو دل پر قیامت ٹوٹ پڑی, بول اٹھے معارضک عن الاشیاء بلغک یا رسول اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یقیناً میری کسی وجہ سے آپ کا دل دکھا ہے. یعنی کیا ہو گیا آپ کو؟ جیسے ہم کسی کو اپنے سے روٹھا ہوا یا ذرا اس کی ٹون چینج ہوا دیکھے تو ہم کہتے ہیں کیا بات ہے, خیر ہے, کوئی دل میں بات ہے, کوئی غصہ ہے. آپ نے انہیں دیکھ کر فرمایا انت الذی تغیر بلالا بامه انک امرؤ فیک جاہلیہ. اے ابو ذر, تم نے بلال رضی اللہ عنہ کو ان کی ماں کی وجہ سے ہار دلائی ہے, تمہارے اندر جاہلیت کی سی خصلت ہے. حضرت ابو ذر یہ سن کر رونے لگے, کہنے لگے اللہ کے رسول, اللہ سے میری اس خطا پر مغفرت طلب کر دیجئے. پھر مسجد سے روتے ہوئے نکل گئے. راستے میں انہوں نے حضرت بلال کو جاتے ہوئے دیکھا تو ان کے راستے میں اپنا چہرہ زمین پہ رکھ دیا. جہاں چل رہے تھے جا کے زمین پہ چہرہ رکھا, کہنے لگے بلال رضی اللہ عنہ, اللہ کی قسم میں اپنا چہرہ مٹی سے اس وقت تک نہیں اٹھاؤں گا. जब तक आप अपना पाँव रख कर इसके ऊपर से ना गुजर जाए, यानी मेरे चेहरे पे पाँव रखें, अल्लाह अकबर, और ये कहें कि तुम मुअज़्ज़ज़ हो और मैं घटिया हूँ, यानी अपने बारे में कहते हैं कि मतलब मुझे घटिया बोलें और अपने आप को मुअज़्ज़ज़ बोलें। हज़रत बिलाल ये देख कर रोने लगे, कहने लगे, अब जुमला सुनिए, अल्लाह की कसम मैं उस चेहरे पर कैसे पाँव रखूँ, सोच भी नहीं सकता जो चेहरा सिर्फ अल्लाह के आगे सजदा रेज होता, कि मैं तो तुम्हारे मुंह पे पाँव नहीं रख सकता। फिर वो दोनों खड़े हुए और एक दूसरे को गले मिले और राज़ी हो गए। आज हम में से कितने लोग हैं जो दूसरों के साथ बीसियों दफ़ा बुरा सलूक कर चुके हैं और घर की मेड्स को जहन में ले आए, अपने से छोटों को, बड़ों के साथ हम बड़े जी जी करते हैं, लेकिन मजाल है कभी इनसे माजरत की हो? कितने लोग हैं जो जानबूझकर दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, इनके दिल ज़ख्मी करते हैं, बच्चों के मजाकिया नाम रख कर इन्हें रुलाते हैं, लेकिन फिर भी नादिम या शर्मिंदा होकर इनसे माफ़ी नहीं मांगते। याद रखिए कि गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती पर इंसान इतराया नहीं करते। गलती पर माफ़ी मांगने से इज़्ज़त कम नहीं होती, बल्कि अल्लाह कई गुना उसके अंदर इज़्ज़त बढ़ाता है। तो आइए आज हम सब अपने आप से एक अहद करते हैं। नंबर एक, किसी का दिल नहीं दुखाऊंगी। अगर कभी किसी को मेरी या हमारी वजह से तकलीफ़ पहुंची, तो बिला झिझक उससे माफ़ी मांग लूंगी। नियत करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये रिवायत जो है ये बुखारी की है, आप इसका डिटेल्स भी लिख सकते हैं, इब्ने इसाकर जिल्द 6 में सफ़ा 244 पे, बुक है जिसमें छपी भी है, और किताबुल ईमान में आप देख सकते हैं, 31 नंबर हदीस है। तो अपने से नियत कीजिए, कभी किसी को हकीर नहीं जानना, ठीक है, करते हैं नियत। अब यहाँ अपने ऊपर लीजिए, यहाँ ज़ुबान तक तो बात कर ली हमने, अब अगली हदीस में जो इसी टॉपिक में हमारे पास मौजूद है, शर्मगाह की बात है, प्राइवेट पार्ट्स। जिस तरह ज़ुबान छुरी है ना, तो प्राइवेट पार्ट जो है ना ये आरी है, वो तलवार से भी सख्त है। इसको बचाना है बुराई से। याद रखिए कि शर्मगाह की हिफाजत से क्या मुराद है, बदकारी से बचाइए। कुरान में आता है, यगुद्दु मिन अबसारिहिम व यख्फज़ु फुरूजहुम, शर्मगाह की हिफाजत करो। किसी ने मुझसे सवाल किया इससे क्या मुराद है, तो मैंने कहा कि ज़िना और कुरुबात ज़िना से इसको बचा लो, यही है, लोअर योर गेज, आंखें झुक गई तो शर्मगाह खुद ही दब जाएगी। तो इसमें याद रखिए सब कुछ है, जिना बदकारी तो है ही है, इसमें होमोसेक्सुअलिटी भी है, लेस्बियनिज्म भी है, ख़ुद से फ़ायदा उठाना भी है, हराम तरीक़ों से बचाना है, अपनी बीवी के अलावा किसी और औरत के साथ ऐसा कोई तसव्वुर भी करना, ये सब कुछ इसमें आता है। इसके लिए नबी सल्लम ने जो हदीस में बात कही थी वो सुन लीजिए। आपने फरमाया, नौजवानों के पास से आप गुज़रे तो आपने फरमाया, ए नौजवानों के गिरो, तुम में से जिसे निकाह की ताकत हो इसे निकाह करना चाहिए, क्योंकि निकाह नज़र को झुकाने वाला और शर्मगाह को महफूज रखने वाला है। ये बुखारी की रिवायत है 5065 किताबुन निकाह, और मुस्लिम में 1400। तो याद रखिए, जिन्होंने अपनी शर्मगाहों की हिफाज़त ना की, फिर उन्होंने दुनिया भी ख़राब की और आख़रत भी। ये भी याद रखिए कि ऐसे काम करने वालों की सिर्फ आखरत नहीं ख़राब होती, बल्कि इनकी दुनिया भी ख़राब होती है। तो हमने क्या बात सीखी है, दो चीज़ों से बचना, आपने मैंने, और वो दो चीज़ें क्या हैं, शर्मगाह और ज़ुबान की हिफाजत, ठीक है। चलिए अगले पे चलते हैं, फजूल गुफ्तगू से इज्तनाब। देखिए पहली में तो सरासर ज़ुबान की हिफाजत थी ना, अब इसमें ये सेकंड टॉपिक जो है फजूल गुफ्तगू से इज्तनाब, इससे क्या पता चलता है, बोलना ही कम है, बोले कौन कहता ना बोले, लेकिन इतना खूबसूरत, इतना नफातुल्ला बोले कैसे है, ज़रा सा इस हदीस को हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि फजूल गुफ्तगू से इज्तनाब के लिए पहली रिवायत हमारे सामने जो है वो हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर से है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि ये रिवायत आपने याद करनी है, आज के होमवर्क में इसको लिखिए, और कल जब आपका शुरू में छोटा सेशन होगा तो उसमें आप इसको दोहराएंगे, पढ़ के आइए, याद कीजिए, मेरे साथ दोहराएं, मन समता नजा, मन जिसने समता खामोशी इख्तियार की, नजा वो निजात पा गया। ये हदीस दूसरे रंग से भी है, नजा का लफ्ज पहले, नजा मन समता, बात एक ही है। ये जो रिवायत आपसे शेयर की है ये तिर्मिज़ी की 660 है, किताब सिफ़तुल क़यामा में है, ठीक है। तो क्या पता चला, खामोश रहना है। दूसरी रिवायत देखिए इसी के अंदर जो आ रही है, अब्दुल्ला बिन बिसर से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कैसे शख्स के लिए खुशखबरी है जो अपनी ज़ुबान का मालिक है, यानी इसे गलत इस्तेमाल से रोकने की कुदरत रखता है, जिसका घर इसे काफ़ी है और जो अपने गुनाहों की शामत से घबरा कर रो पड़ा। हसन दर्जे की रिवायत है, सहीहुल जामिअ सगीर 3929 नंबर की, तबरानी में भी मौजूद है। तीन चीज़ें हैं, ज़रा से इनको हाईलाइट करें। पहली बात है अपनी ये ज़ुबान के आप मालिक हो। लिखिए ज़रा अपने आप से एक सवाल, क्या मैं अपनी ज़ुबान की मालिक हूँ या मेरी ज़ुबान मेरी मालिक है? दोनों को लिखिए, फ़र्क बताती हूँ। क्या मैं ज़ुबान की मालिक हूँ? अगर आप ज़ुबान की मालिक हैं तो ज़ुबान किसके हुक्म पे चलेगी? आपके हुक्म पे चलेगी। और अगर आप अपनी ज़ुबान के मालिक हैं तो क्या होगा? ज़ुबान का जो दिल करेगा बोलेगी और आपसे वही बुलवाएगी। तो कौन सी सूरत ठीक है, पहली के दूसरी? पहली ठीक है, हमने अपनी ज़ुबान को काबू में रखना है, ना कि ज़ुबान के काबू में आना है, ठीक है। फिर अब देखिए, जिसका घर उसको काफ़ी हो, किसको कहा जा रहा है? मर्द को। तो जहाँ औरतें कहती हैं नहीं हमें घर में रखेंगे तो हमारे ऊपर पाबंदी है, हाँ। और तीसरी बात है, गुनाहों की शामत से घबरा कर रो पड़ा। ख़ुद से सवाल कीजिए, इसके नीचे लिखिए मुहासबे के नुक्ते, क्या मैं अपनी ज़ुबान की मालिक हूँ या ज़ुबान मेरी मालिक है? क्या मैं अक्सर खामोश रहती हूँ? क्या मुझे घर में रहने में मज़ा आता है या बाहर घूमने फिरने में? और क्या मैं अपने गुनाहों की शामत से घबराती हूँ? अल्लाह ताला आपको मुझे इसकी तौफीक दे। अगली रिवायत देखिए, हज़रत उक़बा बिन आमिर से, कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, निजात क्या चीज़ है, यानी निजात का सबब क्या है? ये कौन पूछेगा जिसको फिक्र लगी हुई है निजात पाने की? तो आपने फरमाया, अमसिक अलैक लिसानक, हर खिलाफ़ शरा बात करने से अपनी ज़ुबान की हिफाजत कर। दूसरा, वल यसा का बैतुक, और तेरा घर तुझे काफ़ी हो, यानी घर में बैठा रहे, ज़्यादा ना घुमा कर, पसंदीदा ही नहीं इवन मर्दों के लिए, बिला वजह बाज़ारों में रोड्स पे जाना, पान छा लिया है, दोस्तों में बैठे हैं, सड़कों के किनारे हैं, गलियों पे हैं, चुराहों पे हैं, कोई चुपालों पे बैठे हैं, पसंदीदा ही नहीं है। अच्छे मर्द घर से काम पे जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, और अपने जायज़ कामों के लिए रिश्तेदारों से मिलना और ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जाते हैं। तो औरतों के लिए तो ये बात फिर उससे भी बढ़ के होगी। तीसरा, आपने फरमाया, वब की अला खतीयतिक, और अपने गुनाहों को याद करके और इन पर नादिम होकर इन पर रोया कर, होगा क्या, तो निजात पा जाएगा। ये सही तिर्मिज़ी की रिवायत है 2406, और ये चीज़ किताबुल जोहद में है, और हकीकत है ये जोहद का ही दर्जा हो सकता है वरना नहीं, और तरगीब में भी 2741 नंबर की रिवायत है। तो फिर क्या पता चला आपको, मुझे आपने मैंने अपनी हिफाजत करनी है। थोड़ा सा छोड़ दे, कितना बोलती हूँ, चलिए ये फजूल गुफ्तगू पे थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, अरबी ज़ुबान में इसको कहते हैं सरसरा, इंग्लिश में कहते हैं टॉकेटिव होना, टू बी टॉकेटिव या टॉकेटिवनेस, और उर्दू में तो आप इसको कहते हैं बातूनीपन। लिखिए अपने लिए चंद कठिन सवाल, बड़े मुश्किल है मुझे पता है, अपना मुहासबा हम नहीं करेंगे ना तो फिर दूसरे हमारा करेंगे। क्या मैं बहुत बोलती हूँ या कम बोलती हूँ? दूसरी बात, जब मैं किसी से फ़ोन पे 15 मिनट बात करती हूँ, उसमें से दूसरा कितने मिनट बात कर रहा होता है और मैं कितने मिनट? यदि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ज़्यादा वक्त मैं बोल रही होती हूँ कि सुन रही होती हूँ? आप कहेंगे हमें क्या पता, तो रिकॉर्ड कर लीजिए। अगला सवाल आज के टू दी पॉइंट, जिसको कहना चाहिए फीस ज़माना हिसाब का, है वो क्या, जब मैं किसी को ऑडियो मैसेज छोड़ती हूँ, स्पेशली आजकल आप देखिए व्हाट्सएप है और भी तरीके होंगे, तो मेरा मैसेज कितना लंबा होता है? अगला नुक्ता लिखे, ये सारे आपके चेकलिस्ट बनेगी इंशाल्लाह, और ये आपका मेरा आईना। दुनिया में कोई आपको ये बातें नहीं बताएगा, ये याद रखिए। लोग घर जाकर बातें करेंगे, पीठ पीछे से करेंगे, लोग आपकी रेपुटेशन बना लेंगे, आपका फ़ोन लेंगे ही नहीं, आपसे बात ही नहीं करेंगे क्योंकि हम बिज़ी हैं, ये बात बहुत लंबी करते हैं। लेकिन आपको मुंह पे कोई नहीं कहेगा, ये सिर्फ़ अल्लाह की किताब और नबी की हदीस में ये खूबी मौजूद है कि आपको मुझे आईने में खड़ा कर दें। चलिए अपने लिए फिर नोट कीजिए, कोशिश करनी हमने, कुछ मुश्किल नहीं। अगर आप बहुत बोलते थे तो क्या हुआ, अब बहुत सुनना शुरू कर दें। कैसे इलाज, मैंने आपने जब तक अपने किरदार को सजा संवार नहीं लेना, मैंने नहीं जाना यहाँ से। देखिए एक जुमला लिख लें, साइड पॉइंट है, जन्नत का जो असल हुसन है ना, वो वहाँ की नहरें, वहाँ के बाग, वहाँ के दरख्त नहीं है, वो तो दुनिया में भी बड़े प्यारे प्यारे हैं। जन्नत का सबसे खूबसूरत किरदार वो इंसान है जो जन्नत में बसाया जाएगा। अब दुनिया में कुछ चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती, और फितरत से जो चीज़ें हटी होती हैं किसी को अच्छी नहीं लगती। यानी बहुत बातें सुनना किसी को अच्छा नहीं लगता, बहुत ऊंची को बोलता है तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा, बहुत तेज 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 बोलता है अच्छा नहीं लगेगा, और बहुत ही गुनगुन करता है तो किसी को नहीं अच्छा लगेगा। नॉर्मल, रिलैक्स। इसका ये भी नहीं होता कि बोले ही ना, ये भी नहीं ठीक। ठीक है, तो जन्नत के शहरी बनने का क्राइटेरियन है। आपने दुनिया में भी देखा होगा, इधर पाकिस्तान में भी मुझे लगता है यकीनन ऐसी चीज़ें हैं, कुछ जगह कुछ कम्युनिटीज़ इतनी पौश होती हैं कि वहाँ जाने से पहले आपको एक ख़ास किरदार शो करना पड़ता है। मसलन आप वहाँ जाएंगे तो रात 8 बजे के बाद हॉर्न नहीं बुलाएंगे, आप अपने घर में 8 बजे के बाद वैक्यूम क्लीनर नहीं करेंगे, आप अगर नीचे फ्लोर ऊपर में कोई ऊपर नीचे के रहते हैं तो थप थप पाँव नहीं रखेंगे, आपके बच्चे शोर नहीं करेंगे। ये महज़ दुनिया की कहानी है। तो जब दुनिया में आप एक दूसरे का इतना ख्याल रखें तो क्या जन्नत में हम एक दूसरे को बदर करें, कभी आपने सोचा? अगर एक बंदा चला जाए ना जन्नत में, बदजुबानी वाला, ताने देने वाला, गीबत करने वाला, या बहुत लंबी बातें करने वाला, वो जन्नत का सारा हुसन ख़त्म होगा। कुरान में बार बार क्यों आता है, ला यस्मऊन फ़ीहा लागिया, और एक जगह क्या आता है, वला तस्मऊन फ़ीहा लगवं वला तसीमा। आप अच्छे खुश मूड में जाते हैं शादी में, बड़ा इंतज़ार था, खुशी थी, आप गए, कोई एक बंदा आपको कड़वा जुमला बोल देता है, नेगेटिव कुछ भी, आप पे रिमार्क ही दे देता है, कैसी लग रही हैं आप, कैसी हो गई, मोटी हो गई, पतली हो गई, बड़ी हो गई, आपका सारा फंक्शन ख़राब नहीं हो जाता? तो आपने मैंने अपने आप को चेक करना है। ठीक है, दूसरा अमल का इसमें अपना नुक्ता लिखिए जिस पे काम करना है, अपने साथ रहने वालों से पूछिए आप मेरे बारे में क्या राय रखते हैं, क्या मैं ज़्यादा बोलती हूँ, कम बोलती हूँ, अच्छा बोलती हूँ या बुरा, या जो भी ए टू जी। इस तरीके से छोटी छोटी बातें अपनी दूसरों से पूछिए, आपको पता क्या होगा, जो आखिरत में नामा माल खुलना है ना, वहाँ तो बन रहा है, वो दुनिया में खुल जाएगा, यहाँ खुलेगा तो हम बचत कर लेंगे। वी कैन अनडू इट, वी कैन डिलीट, वहाँ जाकर नहीं खुलेंगे। और याद रखिए, ज़ुबान छुरी से भी तेज़ है, इसी ज़ुबान से कलमा पढ़ता बंदा, ला इलाहा इल्लल्लाह। 2-3 दिन पहले एक सिस्टर ने कलमा पढ़ा, तो मैं उस दिन से ही उनकी बात सोच रही हूँ कि यही ज़ुबान है ना, सिर्फ एक ला इलाहा इल्लल्लाह का गवाही है ना, मोहम्मद रसूलुल्लाह, ज़िंदगी में कितना बड़ा चेंज आ जाता है। और हमने चूँकि बचपन से पढ़ा हुआ है तो हमें इसकी कोई कदर ही नहीं है। ठीक है, चले अब आगे का टॉपिक जो है ना, ये थोड़ा सा और भी सेंसिटिव है, लेकिन क्या आज सारा दिन आपको ये ज़ुबान से मुतल्लिक और शर्मगाह से मुतल्लिक बातें याद रहेंगी? मैंने ज़्यादा शर्मगाह पे बात नहीं की, आगे फिर आएंगी, लेकिन ज़ुबान सीधी कर लेते हैं, बाकी चीज़ों को साथ साथ देख लेंगे इंशाल्लाह। लख बातें नहीं करनी, वल्गर बात नहीं करनी, और इसमें सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, अब अगला टॉपिक देखिए, खुफिया और एलानिया। अल्लाह से डरना नंबर एक, मियाना रवि इख्तियार करना 2, और अदल करना, ये 3 अमल हम अब अगली जितनी हदीसें पढ़ेंगे उसके अंदर देखेंगे कि हमने अपने आप को अल्लाह के खौफ के साथ ज़िंदा रखना है, दरमियाने रवि में रखना है, क्योंकि एक हदीस में बाज़ दफ़ा एक से ज़ायद चीज़ें होती हैं। तो ये जो टॉपिक्स बने हुए हैं ये बड़े खूबसूरत हैं, ये इसी मतलिक है। आइए देखिए, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, सलासुन मुंजियातुन खशियतुल्लाह फ़िस सिर्री वल अलानिया वल क़स्द फ़िल फ़क़्री वल गिना वल अदलु फ़िल गदबी वर रिदा। तीन काम निजात देने वाले हैं। कौन कौन से? नंबर एक, खुफिया और एलानिया। मुराद क्या है? तन्हाई में और लोगों में। दोनों सूरतों में अल्लाह ताला से डरना, फ़कीरी और अमीरी हर हाल में मियाना रवि इख्तियार करना, और गदब और रज़ा हर हाल में अदल और इंसाफ से काम लेना। ये भी सिलसिला सहीहा में 1802 नंबर की हदीस है, हसन दर्जे की है, जामे सगीर में 3039। आप कहेंगे किताबों के नामों से क्या होता है? बहुत फ़र्क पड़ता है। आज दीन में यही काम करने का है कि जिसने कहा क्या कहा इस तसव्वुर को ख़त्म कीजिए। ये दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें अल्लाह की और रसूल की बात करने की तौफीक दे, इसके अलावा तीसरी बात ना हो। अब ज़रा से इस पर गौर करते हैं। पहली बात देखिए कि खुफिया और एलानिया, अल्लाह से डरना। कल तक तन्हाई में भी अल्लाह से डरना नस्बतन आसान था, आज मुश्किल हो गया। देखिए कल का दौर ले लीजिए, कोई सिनेमा घर जाता, नाइट क्लब में जाता, चार लोगों को खबर होती ना, कितने बदनाम थे वो मर्द, कोठे पे जाते हैं, तवायफों के पास जाते हैं, गंदी फिल्में लाकर घर में अगर माँ बाप छुपा भी देते थे और ये कहते थे ये बच्चों के देखने वाली नहीं, तो इंतज़ार करते थे ना कि बच्चे सो जाएं, सारे सो जाएं तो हम वो गंदी फिल्म देखें, जो जिस तरह बच्चों के लिए नाजायज़ है वैसे ही माँ बाप के लिए भी नाजायज़ है। कोई वीडियो दुनिया में अडल्ट ओनली नहीं होती, लेकिन एक फ़िक्र थी, घर में एक ही टीवी होता था और अमूमन लाउंज में होता था, सारे बच्चे सोएंगे और क्या धड़का नहीं लगा रहता होगा कोई बच्चा उठ के ना आ जाए, घर में कोई बुज़ुर्ग है, बुज़ुर्ग तो वैसे ही रातों को उठते रहते हैं। आज उस बच्चे के लिए भी उतना ही आसान है जितना कल बाप के लिए आसान था। ये फ़ोन मेरे हाथ में, मैं इधर बैठी हूँ, अल्लाह ना करे मुझे कभी इसकी तौफीक हो, मैं कुरान पढ़ा रही हूँ, आपसे कौन सबक सुना है, और मैं अपने कम फ़ोन पे कुछ भी खोलूँ, मेरे सामने स्क्रीन रखी हुई है, मैं अपने लैपटॉप से जो मर्ज़ी देखूँ, आज मुश्किल है। अल्लाह ने सहाबा किराम को आज़माया था, सूरत मायदा में आता है कि शिकार मना है एहराम की हालत में, तो जब सहाबा किराम ने हुदैबिया के सफ़र में एहराम बांधे हुए थे तो करीब करीब से शिकार होके गुजरते थे, कब वही डरेगा मैं यखाफ़हु बिलगैब, वो उनके शिकार इर्द गिर्द फिरते थे, हमारे गुनाह इर्द गिर्द फिरते हैं। इस आँख को बंद करना पड़ेगा, इस कान को रोकना है, और ये देखिए हाथ, ये क्या चिट चैट। पहले एक लड़की लड़के को लव लेटर लिखती थी, और वो लेटर पहुँचाना कैसे ये भी एक मरहला था, और वही लेटर अब्बा जी के हाथ आ जाता था, कोई कबूतर नहीं है जो जाके आपके लवर को या आपके बिलवेट को आपका खत दे। आज कितना आसान है, मिनट मिनट की चैटिंग होती है आज मंगेतर्स में, और जिनकी दोस्तियाँ वो तो अपनी होंगी, शोहर बीवी हो सकता है गुस्से वाली मैसेज करते हो एक दूसरे को, ये ले आना तो वो क्यों नहीं लाया, आए क्यों नहीं, और सारा रोमांस और जो वो गैर महरमों में हो रहा है। और ये जो आपके बड़े बड़े बिलबोर्ड्स कहते हैं कि आप सारी रात बातें ही करते जाएं, अनलिमिटेड पैकेज, रात के फ्री पैकेज, क्यों ये भी अनलिमिटेड है, ये भी फ्री है। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। याद रखिए अल्लाह के नबी की एक हदीस से पता चलता है, वो शख्स जो दूसरों में तो बहुत अच्छे काम करे क़यामत के दिन फिर भी जहन्नुम में होगा, तो पूछा जाएगा तुम यहाँ कैसे आ गए, तो कहेगा मैं अकेले में गलत काम करता था, बांध लें खुद को। मुश्किल है आज, आपने सूरत अलहराफ में अगर वाक्या पढ़ा हो मछली वालों का, जिन्होंने मछलियाँ पकड़ी और फिर हुक्म बदल दिया, कुरान क्या कहता है, आती थी मछलियाँ शुर्रान शुर्रान, उछल उछल के बाहर आ रही थी। किसी भी सोसाइटी में हराम का उछल उछल के आना आजमाइश होती है, और आज ये हराम गली गली है, तो अपने आप को खुद बांधे। आप अपने बच्चों पर कैद नहीं लगा सकते, आप अपने यंग बेटों को घर में कैद करके आप उनके सर पे नहीं बैठ सकते, आप घर में भी बैठे हैं आपको नहीं पता आपका बच्चा क्या कर रहा है, आप कुरान क्लास में बैठे हैं आपको नहीं पता आपकी बच्ची क्या कर रही है, बिलीव मी। अंदर अंदर हज़रत यूसुफ़ के अंदर अल्लाह का खौफ थे ना, तो कह अल्लाह मुझे इन औरतों के चुंगड़ से बचाकर जेल में भेज दे, मुझसे ये इनके नाज अंदाज नहीं देखे जाते। अपने बच्चों की तरबियत ऐसी करें। आप हैं कि नहीं, अब्बू घर पे नहीं, अम्मी घर पे नहीं। कई बच्चे इंतज़ार करते थे पहले अम्मी अब्बू घर से जाएं फिर फिल्म देखें, तो अम्मी अब्बू चले जाते हैं, अम्मी अब्बू का रब तो उधर ही होता है ना। फिर आप देखिए कि ये चीज़ बच्चों में पैदा कीजिए, अपने अंदर भी कीजिए। अल्लाह को बड़ी आर आती है उस बंदे पे जो दूसरों को देखकर तो गुनाह छोड़ दे, लेकिन अल्लाह ताला को देखकर उस गुनाह को ना छोड़े, करते हैं नियत। चलिए सवाल लिखें इस अमल पे, जो भी टॉपिक डिस्कस होगा ना उसके साथ मुहासबे के नुक्ते होंगे। क्या मैं अकेले में अल्लाह से डरती हूँ? क्या कभी नफ्स की रग़बत पर मैं गलत चीज़ें देखने तो नहीं लग जाती? क्या मैं गलती से ही सही कुछ चीज़ें सुनने तो नहीं लग जाती? और जब पता लग जाता है इसमें हराम चीज़ है, गलत चीज़ है, तो क्या होश आते ही, समझ आते ही मैं उसको पीछे कर देती हूँ? देखिए बाज़ लोग भूलते हैं फिर कुछ भोले बन जाते हैं। जितना ज़्यादा इस पे गौर करेंगे आपको दिल खुलेगा आपका इंशाल्लाह। गोल बनाइए, अगर मुझे लोगों का डर है तो अल्लाह का क्यों नहीं, इसके लिए नियत करनी है इंशाल्लाह। फिर दूसरी चीज़ देखिए, अगला अमल है जो भी एक टॉपिक के अंडर आते हैं तो उसको ए बी सी कर लिया करें, ताकि आपकी चेकलिस्ट बड़ी आराम से बन जाए। फ़कीरी और अमीरी हर हाल में मियाना रवि इख्तियार करना। जी ये क्या मसला है? देखिए आज का सबसे बड़ा मसला जो है ना, हमारे अपने मुल्कों में मैंने जो चीज़ ऑब्ज़र्व की है, अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर है। अमीर कहते हैं फ्रॉन करो, शो करो, एक्सपोजर, 5 से 1000 से तो ऊपर का जोड़ा शुरू होता है, और जब सिल के आपके घर आता है तो 10 हज़ार का बिल बन चुका होता है। गरीब बेचारे आज भी मोटे रेशमी में भी धूप में खड़े काम कर रहे हैं, और आप पतली लॉन पहन कर एसी में भी पंखा झल रहे हैं, हाय बड़ी गर्मी बड़ी गर्मी है कि नहीं? आप खर्च करने जाते हैं अपनी ज़ात पे, पता ही नहीं चलता आपको 20-25 हज़ार का बिल बन जाता है, 2 ही 3 जोड़े तो लिए थे जी, यस मैम देख लीजिए ये। और जब मासी को देना होता है या ज़कात के माल की चीज़ें ख़रीदनी है तो कहते हैं लेने देने वाले को मोटे कपड़े ला दो, है ना ये कहानी? अल्लाह को नहीं पसंद। यहाँ अगर इस मौजू को जिसके ऊपर मेरी इस वक्त नज़रें गौर से देखिए ना, तो इसको अपने ऊपर लीजिए। हर बंदे के हाथ में कभी बहुत पैसे होते हैं, कभी नहीं भी होते हैं। आप ये मत सोचिए कि अरबपति लोग जो उनके पास हर वक्त पैसे होते हैं। मैंने देखा लोगों की जेब में $20 भी नहीं होते, और गाड़ियाँ और घर के बाहर इतनी बड़ी तख्तियाँ क्योंकि किस्तों में गया, माल गया। बड़े बड़े कारोबारी लोग हैं, घर में खर्चा देने को नहीं होते क्योंकि सारे इन्वेस्ट कर दिया। बल्कि जो जॉब करते हैं या जिनको पता है एक लिमिटेड अमाउंट आनी है, वो पूरे महीने को मैनेज करके रखे होते हैं पैसे। अमीरों के पास कोई नहीं होते पैसे, उनके यहाँ सिर्फ स्टेटमेंट्स में होते हैं या प्रॉपर्टीज़ में नाम पे लिखे होते हैं। अपने ऊपर लीजिए और लिखिए, बल्कि मैं यहाँ आपको चंद नुक्ते देती हूँ, आप लिखिए। अगर आपको किसी भी जायज़ हलाल जगह से, चले बच्चियों पे नज़र रख के कहती हूँ, 10 हज़ार रुपये मिल जाए तो कैसे खर्च करेंगी? और आप जो सिस्टर्स हैं, जो बड़ी औरतें हैं, घरेलू ख़वातीन, आप ज़रा से पैसे बढ़ा लें क्योंकि 10 तो आपके लिए बहुत थोड़े हैं। अगर आपको किसी भी जगह से, मैं नहीं कहती आपका बॉन्ड निकले, आपको प्राइज़ मिले, कुछ भी खुशी में मियाँ नहीं पकड़ा दिया आपको, अगर आपको 50 हज़ार रुपये मिल जाए तो आप उसको कैसे इस्तेमाल करेंगी? ये आपका सवाल है, आपने ख़ुद से जवाब देना है इसका। और अगर कोई मर्द, कोई करोड़पति अरबपति, तो भाई अगर आपको कहीं से 1 करोड़ रुपया मिल गया तो क्या करेंगे? मैंने अक्सर जब लोगों से ये सवाल किया तो कहते हैं सारा अल्लाह के रास्ते में दे देंगे, तो मैं कहती हूँ आज जो है वो दे दिए, आज जो है वो दे दिया आपने। अगर आज आपने 10 लाख में से नहीं सारा दिया तो कल 1 करोड़ में से तो आपकी चीखें निकल जानी है। याद रखे एक जुमला लिख ले, जितना माल ज़्यादा होता है उतना दिल तंग होता है, क्लॉग आ जाता है। अमीरों को देख लिए, गरीबों को देख के वो अपनी सारी जमा पूंजी उठाकर दे जाएंगे, अल्लाह मालिक है। और अमीर जमा तफरीकों में पड़े रहेंगे कि अभी तो अगले साल ये खर्चा, उसके बाद ये बच्चों की शादियां, ये वो है, इल्ला माशाल्लाह। ना अमीर सारे बुरे हैं ना गरीब सारे अच्छे हैं, अमीरों में अमीर भी बड़े खूबसूरत है, वो उस्माने गनी है, और गरीबों में कई गरीब भी बड़े कंजूस हैं। तो आप अपने ऊपर लें, जब मेरे पास खुले पैसे होते हैं तो मैं अमूमन कहाँ खर्च करती हूँ। मसलन आप में से कोई एक, मैं नहीं कहती मेरे अब जुमले पे अमल करके जाएं, लेकिन अगर आप बाज़ार जाती हैं, आपकी जेब में कितने पैसे होते हैं सोचिए, अपना लिख लें खुद ही। आज के दौर में पाकिस्तान में एक औरत जब शॉपिंग करती है या कहीं भी जाती है, उसके पर्स में कितने पैसे होते हैं? क्या वो सारे पैसे खर्च करके आती हूँ? ये लिखिए सवाल। क्या मैं अक्सर उधार में तो नहीं पड़ी होती? किसी का मैंने देना तो नहीं होता? और साथ वालों से ज़रा 1,000 देना, 500 देना, अभी देती हूँ अभी देती हूँ। फिर अगला सवाल यहाँ लिखिए, महीने के आखिर में मेरी क्या हालत होती है? याद रखिए, बेहतरीन बेहतरीन तरीके से मनी मैनेजमेंट क्या है, शुरू महीना है कि आखिर महीना है, एक जैसा होना चाहिए। वो हदीस याद होगी, आप सिर्फ ऐसे ही लिखना चाहे ना थोड़ी सी उसकी बात, कि खुश्क साली थी, सब जगह खुश्की थी, एक शख्स ने बादलों में से आवाज़ सुनी कि हुक्म दिया जा रहा है बादलों को कि इसकी फलानन फलां के खेत पे जाके बरसो। उसने देखा बादल चलना शुरू हुआ, थोड़ी दूर जाकर एक खेत पे बरसना लगा, इर्द गिर्द खुश्की है, सिर्फ उस खेत में बरस रहा है, और एक नाले के ज़रिए पानी वहाँ पहुँच गया, जो भी हदीस की डिस्क्रिप्शन है। उसको तजस्सुस हुआ कि आखिर ये कौन बंदा है? तो उस पे फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया जो उस बात में थी, कि एक आदमी वहाँ आया तो उसने कहा ये तुम्हारा बाग है, क्या नाम है? वही नाम था जो ऊपर बादलों में था। कहा तुम्हारा क्या अमल है? सबका खेत खुश्क है, तुम पे बारिश हो रही है। कहने का कोई ख़ास नहीं, बस जब इस खेत की फसल आती है तो तीन हिस्सों में बांटता हूँ, पहली अपनी बीवी बच्चे रिश्तेदार सबकी ज़रूरियात पे, यानी ज़रूरियात पूरी करता हूँ, दूसरा हिस्सा जो है वो मैं आगे से बीज के लिए संभाल लेता हूँ अगले साल की फसल, तीसरा मैं दे देता हूँ अल्लाह के रस्तों में। अब वो किसको देना है, मिस्कीन को कि रिश्तेदार को? कहने का बस अल्लाह को तेरी ये बांट पसंद आ गई। आज अगर हमारे पैसे वाले लोग इस उसूल पे अमल कर ले तो हमारे ख़ानदान में एक भूखा नंगा ना रहे। बाहर हम बड़े बड़े चंदे और डोनेशनें देते हैं, लेकिन हमारे अपने ख़ानदान के रिश्तेदारों के घर हो सकता है गोश्त पके हुए महीनों गुजर चुके हों, इल्ला माशाल्लाह। तो हमेशा मुरव्वत पे रहिए, बीच में रहिए, ठीक है? फिर अगला सवाल करें कि क्या अक्सर मेरे पास पैसे होते हैं कि मैं पैसों की कमी का शिकार होती हूँ? और स्पेशली बच्चियों को, अपने घर की बच्चियाँ, चाहे आपके शौहर करोड़ों कमा रहे हैं ना, उनको हाथ खींच के खर्च करना सीखें। मैं कई ऐसी मिसालें आपको दे सकती हूँ, सिर्फ घर इसलिए टूटे कि लड़की बड़ी लखलोट थी, माँ बाप की लाडली कह लें जिसकी थी, जो आते डली हुई थी, वो मर्द नहीं बर्दाश्त कर सका। और जिस उम्र में अमूमन शादियाँ होती हैं, लड़कों के पास पैसे कोई नहीं होते, ये तो अम्मा अब्बा जाके गज बज के शादियाँ कर आते हैं ना, और इतने जेवर डालते हैं, वो लड़का तो हो सकता है हक मेर के पैसे ना दे, क्योंकि उसका कैरियर नहीं। अभी तो बेचारे ने, जैसे बच्ची को खाना नहीं सही पकाना आता, इस तरह लड़के की जेब में पैसे कोई नहीं होते, वो बाप ही डालता है उसके जेब में कि जा बेटा बीवी को जाकर आइसक्रीम खिला ला। तो हर एक जगह तो ऐसा नहीं चलता। अपने आप को हमेशा हर जगह खुश रखें। कुछ लोग कहते हैं कि औरत सुई की तरह होनी चाहिए, मोटे में से भी गुजर जाए बारीक में से भी गुजर जाए, तंगी तरशी ज़िंदगी में आती है, ये कोई लाड नहीं है कि आप कहें जी कि मैं तो स्पॉइल्ड हूँ और मैंने ऐसे ही रहना है। फिर आप देखिए, गज़ब और रज़ा हर हाल में अदल से इंसाफ से कायम, ये अब सी पॉइंट है इस हदीस का, इसको भी समझिएगा। हम सब के ऊपर मुख्तलिफ कैफियात आती हैं, कभी हम किसी से गुस्से में होते हैं, नाराज़ हैं, खूब गुस्सा आया हुआ, और कभी हम बड़े खुश होते हैं। दोनों हालतों में क्या इंसाफ की बात करती हूँ? थोड़ा सा समझाऊँ, कुछ लोग इमोशनल होते हैं, अच्छे हुए तो इतने अच्छे, तारीफ़ों के पुल सब के ला के ज़मीन से आसमान पे उतार चढ़ा देंगे किसी को, वो आम बंदा होता है उसकी तारीफ़ें कर करके उसको बहुत ऊपर ले जाएंगे। और इसके बरक्स क्या होगा दूसरी तरफ, आप सब जानते हैं, जब ज़रा सा जोश टूटा तो उसको पकड़ के ज़मीन के अंदर दबाना चाहेंगे। हमेशा भी मॉडरेटेड, दरमियान में रहिए। आपकी किसी से बनी किसी से नहीं बनी, आपकी नसीब है उसके नसीब है, आप उसके बारे में बहुत लंबी चौड़ी बातें ना करें। तो ज़रूरत किस बात की है, हम अपना जायज़ा लें और इस चीज़ को देखें कि क्या हम सब जो बातें यहाँ सुन सीख रहे हैं हमारे अमल की है। आपको कभी भी कुरान पढ़ते हुए ये एहसास हुआ कि इन चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं थी, नहीं हुआ होगा ना। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल मिलेंगे, अपनी और दोस्तों को बताइए। आपको लगता है जो बातें हो रही हैं इसकी ज़रूरत है? अपनी अपनी दोस्तों को, अपने साथियों को दावत दीजिए। ये बहुत बड़ी नेमत होती है कि अगर इंसान को कोई नेकी का मौका मिल जाए और फिर वो उससे फ़ायदा भी उठा ले। हम दुनिया में हर काम वक्त से पहले करने के लिए तैयार हैं, लेकिन नेकियों में हम पीछे क्यों होते हैं? अल्लाह ताला हमारे लिए आसान करें। जज़ाकअल्लाह खैर। ये जितने मैंने पॉइंट्स लिखाए हैं आपने इसको अलग से नोट करने हैं, अपना जायज़ा लेना है। आप देखिएगा इन चंद दिनों में आपकी शख्सियत खुल के सामने आ जाएगी और आपका फ़ायदा। कोई ना करे सिर्फ सुन भी ले, बरकत तो मिल ही जाएगी, लेकिन बरकत नहीं हिदायत भी लेनी है और अपनी ज़िंदगी में इसकी बेहतरी भी लेके आनी है। जज़ाकअल्लाह खैर। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समील अलीम व तुब अलैना इन्नका अंत तवाब रहीम व सल्लल्लाहु तआला खैरी खल्क़िही व सहाबी अजमाइन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।